वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हर रोज़ हम समाज में टूटते हुए उन मूल्यों को तलाशने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का आधार हैं, हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक नई दिशा देते हैं। क्या हुआ है ऐसा कि समाज में इस तरह से सभी मूल्यों का ह्रास हो गया है? क्या इन मूल्यों को दोबारा जीवित किया जा सकता है? क्या इन जीवंत मूल्यों को अपने जीवन में उतारा जा सकता है? यही मकसद है हमारी इस श्रृंखला लिविंग वैल्यूज़ का। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसकी शायद बहुत कमी हमें दिख रही है अपने समाज में, और वो है सिंप्लिसिटी यानी सादगी। सिंप्लिसिटी आपके व्यक्तित्व की हो सकती है, और आपकी पोशाक की हो सकती है, आपके विचारों की हो सकती है, आपकी ज़िंदगी की हो सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं माउंट आबू से आई हुई ख़ास मेहमान ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन। आपका स्वागत करते हैं शीलू बहन जी। और अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें, सादगी की बात करें, सहजता की बात करें, तो समाज में आज के इस दौर में कैसे रह सकते हैं हम सिंपल? हर तरफ चकाचौंध है, चाहे वो मीडिया का प्रभाव हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव हो, चाहे वो मल्टीनेशनल्स का आना हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की बात हो, पूरा विश्व सिमटा हुआ नज़र आता है। ऐसे में हर कदम पर, हर स्तर पर, समाज के हर वर्ग में फैशन, चकाचौंध, खूबसूरती या फिर ये जो रोशनी है ये नज़र आने लग गई है। इसमें सादगी को कैसे तलाशा जा सकता है?
आज की दुनिया को हम कलयुग कहते हैं, और वास्तव में देखा जाए फैशन ये कलयुग के अंतिम चरण का एक, जिसको हम धर्म ग्लानी कहते हैं, वो स्वरूप है। पहले भी तो इंसान जीते थे, लेकिन कैसे जीते थे? क्योंकि कहावत प्रसिद्ध है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन आज की विचारधारा बदल गई है, लोग समझते हैं हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। यस, तो लिविंग तो बहुत हाई है, लेकिन जो अपने विचार है वो बहुत सिंपल साधारण से है। पर होना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
बट आज के इस दौर में भी क्या वो पाया जा सकता है, और वो कितना रेलेवेंट है? कहा जाता है कि देश काल और पात्र के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। अब आज के इस वक्त में जब इतनी चकाचौंध है, इतनी भीड़ भाड़ है, इतना पीयर प्रेशर है, मैं सिंपल रहना भी चाहूँ तो मेरे आसपास कोई भी इतना सिंपल नहीं है तो मैं खुद ही ऑड पर्सन आउट हो जाऊँगी, मैं नहीं भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहूँ, तो वो सहजता, वो सिंप्लिसिटी ज़िंदगी की कहाँ से लेकर?
देखा गया है कि फैशन में इंसान आज इतना समय, श्वास, शक्ति, अपनी संपत्ति, सारी कुछ दे रहा है एक फैशन के खातिर, एक अल्पकाल की बाह्य सुंदरता के खातिर। परंतु हम जानते हैं कि ये बाह्य सुंदरता कितना समय चल सकती है।
लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं उनके पास, क्योंकि जनरली जब समझाने की बात आती है तो मन चंचल होता है, समझने को तैयार नहीं होता, तो वो उनका कहना ये हो सकता है कि जब हमें इतना खूबसूरत लग रहा है, जब इतना अच्छा लग रहा है फैशन करना, तो क्यों ना करें, उसमें बुराई क्या है? तो कहाँ ये जो फैशन की दुनिया या ये पूरा ग्लैमर जिसमें हम फंसते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ये हमें किस तरफ लेकर चला जाएगा, ये बताना बहुत ज़रूरी है।
ये तो हम बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे विनाश की ओर ले जा रहा है। धर्म ग्लानी में एक निशानी आती है फैशन की, जिसमें बताया कि स्त्रियां अपने केशों का श्रृंगार करेगी। आज जिस प्रकार से जो श्रृंगार हो रहा है उसका तो कोई अंत ही नहीं है, और हम उसके लिए कितना धन खर्च कर रहे हैं। जो धन हम देख रहे हैं, आज इतनी गरीबी है चारों ओर, इंसान भूख मर रहे हैं, खाने को नहीं है। आज 80% अगर हम दुनिया का रिसोर्स हम देख रहे हैं, वो 20% लोग यूज़ कर रहे हैं, और 20% जो रिसोर्स है वो 80% लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतना इम्बैलेंस है संसार के अंदर, और जो बहुत धनवान है वो तो फैशन परस्त होकर के वो सारी संपत्ति अपने फैशन के ऊपर ही लगा रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये तो हम समझते हैं कि समाज के साथ अन्याय है, मानवता के साथ अन्याय है, और इस अन्याय के कारण आज इतना दुख और इतनी अशांति संसार में बढ़ती जा रही है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, वो समझता है कि ये सब मेरे लिए ही है, मैं ही इसे प्राप्त करूं, मुझे समाज को भी कुछ देना है, ये तो इंसान तो भूल ही गया है। और परिणाम स्वरूप वो इम्बैलेंस संसार में आ गया है।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि हमें समाज से सब कुछ ले रहे हैं, हम समाज के प्रति हमारा दायित्व, समाज सोसाइटी जो पूरा आसपास हमारा माहौल है उसके प्रति हमारा दायित्व जो है। तो लेकिन मैं ये एक और बात जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये एक पूरा पुरानी एक सोच थी, आज बदल गई है और हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग हो गई है। लेकिन एक और वर्ग है जो कहता है कि हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग, क्या ये दोनों चल सकते हैं साथ साथ?
नहीं, हम फैशन के विरुद्ध नहीं हैं। फैशन चाहे बालों का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे गहनों का हो, या किसी भी प्रकार का फैशन हो, हम इसमें कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम सारा समय, सारी संपत्ति उसके प्रति हम खर्च दे कर रहे हैं, ये ज़रूर हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्योंकि आज मान लीजिए आत्मा उड़ गई और ये शरीर एक निर्जीव चीज़ यहाँ रह गई, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर वो किस काम की?
और सबसे बड़ी बात, जो एक बहुत खूबसूरत बात यही है कि सही वक्त पर सही चीज़ की जाए। आज हो ये रहा है कि इतनी छोटी उम्र से ही ये जो पूरा, जहाँ बचपन में स्कूल तक हम जब होते थे तो सिंपल लिविंग की जो बात है वो बिल्कुल मायने रखती थी, एक यूनिफॉर्म में ही रहते थे और एक ही तरीके का पूरा रहता था। आज देखा ये जा रहा है समाज में कि छोटे से छोटे बच्चों से ही पार्लर्स में जाने की तैयारी हो गई है, मतलब फैशन कॉन्शियस हो गए हैं, ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं, अपना पर्सनालिटी कॉन्शियस इतने ज़्यादा अभी से हो गए, तो वो कहीं सही वक्त पर सही चीज़ भी नहीं हो पा रही है?
हाँ, क्योंकि ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानियाँ हैं। आज जो अपने आप को व्यक्ति शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा है, जो मिट्टी है, ये पंच तत्वों का पुतला है, पंच तत्वों से आए हैं, वो वापस वहीं हमें जाना है इस देह को, तो लेकिन हम उसी को ही सबको समझ बैठे हैं। एक बहुत सुंदर कहावत है कबीर की, सुनी होगी आपने, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, तो मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। तो कुम्हार बड़ा अभिमान जताता है कि मैं मिट्टी को रौंद रहा हूँ, इसे सुंदर मैं घड़ा बना रहा हूँ, या मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, या जो कुछ भी बना रहा हूँ, लेकिन एक दिन मिट्टी उसे रौंद देगी, ये वो समझ नहीं पा रहा।
बहुत सुंदर आपने बात की, बहुत खूबसूरत एक सिमली आपने दी कि मिट्टी जब रौंदेगी तब तो एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि तब सब सारी खूबसूरती सब कुछ खत्म हो जाएगी।
एक शव हो, चाहे कोई फिल्म एक्ट्रेस हो, बहुत सुंदर है, लेकिन वो मर चुकी है, उसमें से आत्मा निकल गई है, अब वो शव चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु उसे तो अग्नि के सुपुर्द तो करना ही है, उसे चाहे दफनाना होगा या अग्नि के सुपुर्द करना ही होगा। ये तो नहीं है कि सुंदर है इसलिए हम उसे रख देंगे, क्योंकि ये पंच तत्वों की चीज़, पंच तत्वों को वापस लौटानी है।
बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही,
तो अगर ये इंसान ये बात समझ जाए तो अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति, जो मानव जीवन की इतनी अमूल्य चीज़ें हैं, हम उनको इनके पीछे केवल न गंवाएं। तो आज जो हमारी लिविंग इतनी हाई हो गई है क्योंकि धन हमारे पास बहुत है, वो धन अगर हम समाज की सेवा में लगाएं तो देखिए समाज का कितना उत्थान हो जाए।
बिल्कुल, अपना अपना कंट्रीब्यूशन हर लेवल पे, अपने लेवल पे करना बहुत ज़रूरी है पूरे समाज के उत्थान के लिए। यहाँ लेकिन शीरू बहन आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कन्फ्यूजन और भी है आज के जनरेशन में, और वो है कि सादगी है क्या, आप सिंप्लिसिटी से क्या मायने हैं, किसे कहेंगे आप सादगी, क्या होती है, क्या चीज़ है वो
सादगी का? हम यहाँ भाव बताते हैं कि हमारे जो पहरवाइश है, हमारा रहन सहन है, हमारा जो कुछ भी वातावरण है, उसमें सादगी हो, अर्थात न बहुत। सादगी का मतलब ये भी नहीं कि हम गरीबी में जिए, अगर भगवान ने धन दिया है तो हम क्यों नहीं उसका उपयोग करें, लेकिन इतना भी न हो कि हम धन केवल इसके लिए खर्च करें, और इतना भी न हो कि धन है और हम फटे पुराने कपड़े पहने या खाएं नहीं, आराम से न रहें, ये भी नहीं है। तो न बहुत ऊंच न बहुत नीच, तो उसका सदुपयोग भी करें, प्रकृति का सुख भी लें, धन का सुख भी लें, क्योंकि धन आखिर है तो सुख के लिए ही।
बिल्कुल।
तो उसका सुख भी हम क्यों न लें। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य इसके पीछे ही अपना सब कुछ गंवा देता है, और परिणाम स्वरूप जिस समय उसकी अंतिम घड़ी आती है वो तो हाथ खाली रह जाते हैं उसके।
शीलू बहन, ये तो बात ये रही कि बाह्य सादगी की अगर हम बात कर रहे हैं कि उसकी भी कितनी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इस पूरी चकाचौंध में ख़ुद को तलाशने के लिए वो सिंप्लिसिटी को, जो बाह्य सिंप्लिसिटी है उसको भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इंटरनलाइज कर दें उसे, अगर हम मन की सरलता की बात करें, उस वो वाली सादगी जो सीधा एक मन से जुड़ता है, विचारों की जो सरलता है, जो सहजता है, एक दूसरे तक पहुँचने की जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको अचीव आज के वक्त में करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का ह्यूमन बीइंग बहुत कॉम्प्लेक्स है ये कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सरलता कैसे ऑब्टेन की जा सकती है।
वो सरलता अर्थात जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, हर परिस्थिति में हम अपने आप को मोल्ड कर सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिजिड हैं तो हम कभी न कभी असफल होंगे अपने जीवन में। फ्लेक्सिबल भी बनना है और साथ साथ अपने विचारों में परिवर्तन भी करना होगा। आज जैसे हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी आज की, अवश्य उन्हें ये सब बातें चाहिए, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं एक जनरेशन गैप, और इस जनरेशन गैप के कारण जो बड़े हैं और छोटे हैं उनका बीच में तालमेल नहीं बनता है। तो आवश्यकता है कि जो बड़े हैं वो भी अपने विचारों को बदले, और जो छोटे हैं वो बड़ों के अनुरूप भी चले,
जो उनका एक्सपीरियंस है उसे समझ के अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें और उसे अपना गाइडिंग टूल बना लें।
हाँ, लेकिन अगर कोई रिजिड बन जाएगा और कहेगा कि नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, जिस प्रकार मैं चल रहा हूँ वही ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति भी जीवन में सफल नहीं होगा।
लेकिन अगर हम आज के इस दौर को सचमुच टटोलते हैं, तलाशते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ जो सामने आती है, जो कॉम्प्लेक्स मैन कहा जा रहा है आज की, आज कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं रह गया। पुराने वक्त में जो थी जनरेशन्स थी उसमें ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ बहुत डीमार्क्ड क्लियर डीमार्केशंस थी। आज इतने ग्रे एरियाज़ हो गए हैं, आज की जनरेशन बहुत ग्रे एरियाज़ में अपने आप को तलाश रही है, फंसा हुआ महसूस करती है, उसके लिए बहुत ऑप्शंस बची रह सकती हैं। उस चकाचौंध में इंटरनली विचारों से, व्यवहार से कैसे बचे अपने आप को, चाहते हुए भी करप्शन है, कितनी सारी और चीज़ें हैं, चाहते हुए भी वो सरलता की तरफ उसको कैसे अपना सकते हैं।
सरलता में आने के लिए वास्तव में पहले तो हमें अपने विचारों को सरल बनाना ही होगा। अगर हमारे विचारों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मैंने बताया, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सब मैं जैसे एक हवाई किले ही बांध रही हूँ, तो कभी भी ये फ्लॉप हो सकते हैं और हम जीवन में निराश हो जाते हैं। अनलेस आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, हम कभी भी इन हवाई किलों में न रहे। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है इंटरनली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँ, अपने अंदर में एक बहुत दृढ़ रहूं, अपने संकल्पों में बहुत श्रेष्ठ रहूं। तो जब अंतर हमारा इतना स्ट्रांग होगा तो फिर बाहर हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आज ये परिस्थिति आ गई है कि अंदर में तो हम खोखले हैं, अंदर में तो जैसे अंधेरा है और हम बाहर ही केवल ढूंढ रहे हैं। तो जिस प्रकार एक हम वो गुड़िया देखते हैं ना, ग्रेविटी उसकी देखते हैं, तो अगर नीचे बेस स्ट्रांग है तो वो कभी गिरेगी नहीं, चाहे उसे इस तरफ हिलाओ या उस तरफ हिलाओ वो गिरेगी नहीं। पर जैसे एक बेपेंदी का लोटा होता है, उसके नीचे कोई पेंदी नहीं है, तो यहाँ गिराओ तो गिर जाएगा, उस तरफ गिराओ तो गिर जाएगा। तो इंसान की आज स्थिति जैसे वो बेपेंदी के लोटे की तरह हो गई है, उनका बेस ही खत्म हो गया कि इंटरनली स्ट्रांग नहीं है।
बिल्कुल, और वहीं वैल्यूज़ की बात आ जाती है, क्योंकि अंदर का अंधेरा जो है वो इसीलिए कहीं ना कहीं है क्योंकि मूल्य रहे ही नहीं गए, समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मूल्य सही है या गलत है। आदर्शों को ये मान लिया गया है कि क्या आदर्शों की बात करते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि किन आदर्शों की बात करते हैं। आदर्श क्यों ज़रूरी हैं, क्यों ये मूल्य हमारे ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि ये आपने कहा हमारा बेस बनते हैं, हम बिन पैंदे के लोटे की तरह इधर से उधर नहीं खिसकेंगे। लेकिन फिर भी एक खासकर अगर सिंप्लिसिटी की बात करें तो इंटरनलाइज करने की जो बात है, जो अंधकार अंदर भरा हुआ है उसे प्रकाशमय करने के लिए क्या रास्ता अपना?
उसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ अपनी जो हमारी जो स्टडी है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो साथी हैं, वो भी कुछ इस प्रकार के स्पिरिचुअल माइंडेड होने चाहिए। आज वो स्पिरिचुअलिटी ही ख़त्म हो गई है, बहुत ही बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, एकदम बाह्य मुक्ता में आ गए हैं, कभी समय निकाल करके अपने लिए कुछ विचार ही नहीं करते हैं कि आखिर हमें केवल एक ही ज़िंदगी नहीं जीनी है और हमें केवल अपने लिए ही नहीं जीना है, हमें औरों के लिए भी जीना है। हम केवल खुद के लिए ही जी रहे हैं तो हम तो जैसे जानवर से भी बदतर हैं, जानवर भी एक दो के लिए जीते हैं और हम केवल अपने स्वार्थ में अपने लिए ही जी रहे हैं।
लेकिन आज की जनरेशन के पास सवाल भी बहुत हैं, पिछले जनरेशन्स के पास सवाल इतने नहीं थे। आज उनके पास, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो आज वो ये जनरेशन जो है वो सर्च में तो है ही, तलाश तो रही ही है। अब बात ये सवाल ये भी आ जाता है कि मैं तो इतना यंग हूँ, मैं अभी अध्यात्म की बात कहाँ से करूँ, वो तो बूढ़ों का काम है, बड़ों का काम है, बुज़ुर्गों की बात है, एक एज के बाद अध्यात्म की बात करनी चाहिए। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं, अगर अध्यात्म की ही बात आपने किया है कि अध्यात्म को तलाशें, किस उम्र में, क्या उम्र की कोई सीमा है अध्यात्म तक, आध्यात्मिक होने की?
आध्यात्मिकता तो हर वक्त हमें चाहिए, और ये जीवन केवल खाओ पियो मौज करो उसके लिए भी तो नहीं है। कई समझते हैं बस खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, लेकिन कल जो था उसके आधार पर ही तो मैं आज हूँ, और आज मैं जैसा होऊंगा उसके आधार पर मैं कल रहूँगा। तो ये जो मेरा वर्तमान स्वरूप है ये कल का परिणाम है, और वर्तमान स्वरूप कल यानी आने वाले कल को एक स्वरूप देगा। तो हम केवल वर्तमान में ही न जिए, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही इस जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम तीनों के तरफ ध्यान देंगे तो ये जन्म हम अपना सफल बना सकेंगे, क्योंकि आवश्यकता है कि ये भगवान की दी हुई देन है मानव जीवन, जिसके लिए कहते हैं कि ये मानव जीवन जो हीरे तुल्य है हम उसे कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि जो मानव उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा आत्महत्याएं या हत्याएं या वायलेंस अगर हम देखें आज के इस दौर में, वो सबसे ज़्यादा, और उनमें भी आत्महत्याएं खुद सबसे सबसे बड़ा अपराध जिसे माना जाता है, क्योंकि हमने इतना छोटा मान लिया है जीवन को, कहीं ना कहीं हम उसकी इम्पोर्टेंस भूल गए हैं।
बिल्कुल, तो ये हीरे तुल्य जीवन को हम जैसे कौड़ी के बदले गंवा रहे, इसीलिए तो आज इतनी सुसाइड्स हो रही है, आज इतनी टेंशन है जीवन के अंदर, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन हर बार हम आपसे ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं, बात हम करते हैं जब तक हमें बात समझ में आ रही है हम उस बात को समझ लेते हैं, लेकिन हर बार कोशिश अगर हम उस रास्ते पर चलने की करते हैं तो, क्योंकि ये वाला रास्ता बहुत आसान है जो आम आदमी जी रहा है, जो जो जो, जो चल रहा है, लेकिन उससे हटके सिंप्लिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, सादा जीवन की बात करते हैं, सिंप्लिसिटी को अपने जीवन में उतारना और अपने विचारों को सरल करना, ये थोड़ा सा मुश्किल इससे लगता है क्योंकि इसमें बाधाएँ बहुत आती हैं।
नहीं, बाधाएं आती नहीं, और ही जो सरल चीज़ है ना उसको हम सहज रीति से कर सकते हैं। हम जानबूझ करके कॉम्प्लिकेशंस ला रहे हैं अपने जीवन में, मानो हम अपने कर्मों में ही कॉम्प्लिकेशंस ला रहे हैं। जैसे मुझे सत्य बोलना है लेकिन मैं उस सत्य को छिपाना चाहती हूँ तो मैं झूठ बोल दूँगी, और जहाँ झूठ बोलूँगी तो उस एक झूठ के बोलने के बाद कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। परंतु अगर मेरे अंदर सत्यता है तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, और वो जो सत्यता है वही मैं बोलूँगी, तो इसलिए मुझे कॉम्प्लिकेशंस लाने की जीवन में ज़रूरत ही नहीं।
लेकिन उन इन्हीं मूल्यों को पे खड़े होने की कीमत भी हम देते हैं, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आज के इस दौर में जब सब कुछ बदला हुआ है, इसमें अगर हम अपने मूल्यों पे खड़े हैं, अपने आदर्शों पर अगर हम खड़े होने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चाहे वो बाह्य लॉसेस के कारण ही है, वो भी कई बार हमें डिप्रेस करती है और हम फिर उस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या मैं गलत हूँ। अगर मैं, वो जो डिप्रेशन है वो कहीं शायद आध्यात्म मदद कर सकता है।
लेकिन क्या केवल धन का ही लॉस को ही हम लॉस मान रहे हैं? वास्तव में कहा गया है कि अगर धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन आज हमने इस कहावत को उल्टा दिया है। हम समझते हैं चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन गया तो जैसे सब कुछ चला गया, क्योंकि धन को ही हमने महत्व दिया है।
लेकिन क्या हम इसको पलट सकते हैं? क्या हम इतनी दूर आ चुके हैं, वापस लौटा पाना, वापस ना भी लौटा के एक नए रास्ते पर चल पाना, क्या ये संभव है?
क्यों नहीं संभव है? कहा जाता है जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कब। कभी भी कोई भी बात असंभव नहीं है। जो अगर हमें बदलना है तो हम कल तक भी क्यों खड़े रहें, क्यों सोचे कि कल करेंगे, अभी क्यों ना करें?
पर क्यों ज़रूरी है? नहीं बदलते, खुश हूँ मैं, क्यों पर अंदर से नहीं खुश हूँ? क्यों मुझे बदलना ज़रूरी है? क्यों मुझे सही रास्ते पर चलना, उन आदर्शों पर टिकना ज़रूरी है?
नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते हैं तो खुद ही दुखी होते हैं। हमने देखा है जो नहीं बदलते अपने आप को, बहुत रिजिड हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक हैं, फिर एक न एक दिन धोखा खा लेते हैं, क्योंकि वो सरल स्वभाव के नहीं हैं, शुद्ध विचारों के नहीं हैं, सबके प्रति वो शुभ भावना जो चाहिए वो नहीं है, स्वार्थ भरा हुआ है, तो एक दिन उनको ही दुखी होना पड़ता है। और अगर हम सरल स्वभाव के हैं, शुद्ध विचारों के हैं, सच्चाई है हमारे जीवन में, ट्रांसपेरेंट है, तो हमें दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन इस लेवल को अटेन आज के इस दौर में भी किया जा सकता है, आम ज़िंदगी जीते हुए भी? क्या मैं अपने आदर्शों पर या जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं उन्हें जीवंत रख सकती हूँ?
बिल्कुल जीवंत रख सकते हैं। क्या है, आज तो मनुष्य का आदर्श ही बदल गया है। पहले हम देवी देवताओं का आदर्श रखते थे, महान आत्माओं का आदर्श रखते थे, उनके चित्र अपने घरों में लगाते थे, या महान नेताओं का हम आदर्श रखते थे, उनके फ़ोटोज़ रखते थे घर में। आज तो केवल अभिनेताओं का रखते हैं फ़ोटो, या कोई नेताओं का रखते हैं जिनमें हम कोई आदर्श नहीं देख पाते हैं, और उनको ही हमने सब कुछ समझ लिया है,
और उन्हीं का अनुसरण करने के लिए हम
उनका ही अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। और बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के जो इंद्रियों के आकर्षण हैं उसी में ही चले गए हैं। अपनी आत्मा को भी मुझे शक्ति प्रदान करनी है, उसके लिए राइट फूड फॉर थॉट चाहिए, यही हम नहीं सोच रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम ये हीरे तुल्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं।
बिल्कुल। और आपने ये कहा कि मैंने जो शुरू में प्रोग्राम जब हमारा आज की कड़ी शुरू हुई थी उसमें ये कहा था कि हीरों का हार अगर मिल जाए तो हम उसी चकाचौंध से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बाह्य खूबसूरती है, बाह्य सुंदरता है जिसपे हम घूम रहे हैं, लेकिन कहीं सादगी कम हो गई। तो सादगी हमारा अपना जीवन जो हीरे तुल्य है वही एक बहुत बड़ा प्रतीक है सादगी और सरलता को। सादगी अपने स्वरूप की, अपनी पोशाक की, अपनी ज़िंदगी की, बाह्य ज़िंदगी की, और सरलता अपने विचारों की, अपने मन की। उसको मेडिटेशनल वे में किस तरह से हर रोज़ कुछ वक्त अपने साथ बिता के कैसे उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं?
मैं सभी श्रोताओं को यह बताना चाहूँगी कि सादगी और सरलता को अपने जीवन में लाने के लिए सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं तो कुछ मन में संकल्प करें, उन संकल्पों में हम श्रेष्ठ विचार करें, अपने विचारों को बहुत ऊंचा ले जाएं, अर्थात हम ये सोचें कि मैं तो एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बहुत ही शुद्ध आत्मा हूँ, ये जीवन जो भगवान ने हमें दिया है ये एक वरदान के रूप में दिया है, लेकिन मैं कहीं इस वरदान को एक अभिशाप के रूप में न बदल दूँ। जो कुछ भी मुझे प्राप्त है ये भगवान का दिया हुआ है, ये अमानत के रूप में है, और मैं इसे अगर और भी ऊंच कर सकती हूँ तो ये मेरी देन भगवान को होगी। अर्थात अंदर ही अंदर हम खुद से भी बातें करें और परमात्मा से भी बातें करें, और हम अपने आप से पूछें कि आखिर हम चाहते क्या हैं जीवन में, हम क्या चाहते हैं। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, जो मेरे पास ही है तो वो मैं अंदर से ही क्यों ना प्राप्त कर लूँ। और जैसे मैं अंदर से ये प्राप्त करती जाऊँगी तो मेरा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा, सादगी आएगी, सरलता आएगी। इस संसार को हम एक ड्रामा, एक खेल के रूप में देखते रहेंगे और हर वक्त हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे और जीवन को एक वरदान समझकर चल सकेंगे।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि किस तरह से, जिसे आज हम लाइफ को एक तकलीफ़ मान लेते हैं, लाइफ को एक दर्द मान के चलते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से भरी हुई है, तो ये रास्ते अपनाकर उन्हीं मूल्यों को जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारी सभ्यता का प्रतीक हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज की ताकत भी हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर हम इसी जीवन को वरदान मान सकते हैं। आप सभी को भी बता दें कि सादगी, बाह्य सादगी और सरलता अपने मन की, उसे अटेन किया जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम थोड़े से अपनी सोच को बदलें, अपने माइंडसेट को एक ज़रा सा भी थोड़ा सा इशारा दें, थोड़ा सा आत्मा की आवाज़ को समझकर इस रास्ते को अपनाएं। शीलू बहन, आज बहुत अच्छा रहा ये चर्चा जो रही और बहुत कुछ हमें समझ में आया कि सिंप्लिसिटी में भी हाई थिंकिंग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
Shine.